प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
नामदेव नाम परमात्मा का रटते जाकी छान छवाई। नामदेव नाम राम का रटते जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरव मर्तक गऊ जवाई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। आप के सो बन जारा बन उतरे वा नौ लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा भाई। कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे वो मगहर मुक्त बिलासा। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अपने आत्माओं यहां की इस संसार की व्यवस्था और सतलोक की व्यवस्था की भिन्नता, उसमें अंतर बता रहे हैं परमात्मा। परमेश्वर के उस अमर ज्ञान सूक्ष्म वेद से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या संदेश दे रहे हैं जो परमात्मा से प्राप्त हुआ कि मन तो सुख के सागर बसरे और नहीं ऐसा यसरे। यस माने महिमा, यानी किसी की जो बड़ाई। अब जैसे कोई अच्छा राजनेता बन गया या कोई सिद्धि प्राप्त करके कोई संत प्रसिद्ध हो गया, किसी का बुरा कर दिया, किसी का भला कर दिया, उसकी मंडी बन गई, उसकी मंडी बन गई, वहां पूजन लायक गए, मनमाने वो ये संत या राजनेता अपनी बनी हुई स्टेच्यू पर उसकी मूर्ति बना लेते हैं, साल भर में एक बार माला डाल देते हैं उसकी आदर करने के लिए, और मनमाने वही कबूतर बनकर अपने ही उस स्टेच्यू पे अपनी तस्वीर पे वही टट्टी पेशाब कर रहा है सर पे बैठ के। तो खाक बड़ाई है या गदा बनकर कि तक मार कर लटका रहा होगा वो जिसकी मूर्ति बनाकर माला डालकर आदर किया जा रहा है। ये खाक यस है, ये क्या महिमा हुई। तो यहां परमात्मा बताते हैं मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। यदि तू महिमा बनाना चाहता सतलोक में चल, सारा संसार सरा होगा, बड़ा भगत था भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखाई और नियमित रहा, व्यवहार का पक्का था। और सतलोक तो जाना है भक्ति सत करके। इसके बाद कहते हैं यदि तू पूरी पृथ्वी का राजा भी बन गया तो क्या होगा भाई। उदय अस्त विच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था, एक मान धाता चक्रवर्ती राजा, और वो फूला नहीं समावा था, कोई भी उसके अधीन राजा, कोई नवाब थोड़ा सा भी गलती कर देता था उसको भयंकर सजा दे करके और अपने अधीन रखता था। कहते हैं शेर ने सवा शेर मिल ही जाता है। एक चुनक नाम के ऋषि, जैसे आपको बहुत बार कथा सुनाई है, इस काल का पुजारी था, ब्रह्म का साधक था, और ब्रह्म तक के साधक को परमात्मा ने उनको काल ही बताया है। काल का पुजारी काल वाले काम कर सकता है। जो साधना इन ऋषियों ने की वो मोक्षदायक नहीं थी, उससे परमात्मा मिला नहीं, इनमें से दिया आगे एटम बम बन गए। तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की इस तुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया था एक वचन से सिद्धि से अपनी पुतली बनाई, चार परमाणु बम बनाकर छोड़ दिए। 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी बात भाषा में, सेना को एक ऋषि ने नाश कर दिया। अब पहले तो उस मानधाता चक्रवर्ती, यानी चक्रवर्ती माने ओरा कंट्रोलर इन ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी का कुल मालिक, पहले तो उसकी महिमा थी, सारी पृथ्वी का राजा है मानधाता चक्रवर्ती है, उसका यश था। और फिर उस चुनक ऋषि का यश हो गया कि उसने वैसा कमाल कर दिया और चक्रवर्ती राजा की सारी सेना का नाश कर दिया। अब फिर उस ऋषि की महिमा होगी, अब वो ऋषि के बनेगा अगले जन्म, और राजा क्या बनेगा, राजा बनेगा गदा स्टार्ट से ही, ये नियम है मालिक का। राजा तो सारे पाप पे पाप करे सारे जीवन में, तो ऋषि साथ में जिसे इसने साधना भक्ति नाम ओम का जाप किया, वो पुण्य और वो कमाई बन गई, और उधर से 72 करोड़ सेना मार दी, ये पाप बन गए। तो दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं जब तक कबीर भगवान की शरण में आप नहीं आते हो, तो दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। तो ये चुनक ऋषि जाएगा महास्वर्ग में, ब्रह्म लोक में, वहां अपनी पूंजी समाप्त करके फिर पुनरावर्ती में शेष पुण्य बचे होंगे तो फिर पृथ्वी का राजा बनेगा। राजा बनकर कोरी को बद कमाओगा, नरे कर्म फोड़ेगा, और फिर जोड़ा जाड़ा यही छोड़कर फिर चलता बनेगा, और फिर बनेगा कुत्ता। और जितने वो सैनिक मारे थे उसने अपनी सिद्धि से, वो सारे सैनिक तो बनेंगे कीड़े, और यो बनेगा कुत्ता, इसके शर्म पड़ेंगे और वो इसने नोच नोच कर खाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। तो इस प्रकार हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझना है। अपन आत्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। हम एक रोटी के लिए कितना समय लगाते हैं, कई मजदूरी करते हैं, कोई किसान का काम करता है, कोई अधिकारी कर्मचारी बनकर अपनी रोजी रोटी के लिए ही हम बहुत समय लगाते हैं। इसमें से थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगा दो, इतना ही पर्याप्त है। 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में, इसका 10% भी भगवान की तरफ लगा दोगे, यूं बरकत कर देगा आपने। 10% समझ लो, लगभग 3 घंटे लाग लो। इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। जब आपको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा और पूरे संत मिल जाएंगे तो मोक्ष में संशय नहीं है यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहोगे। ये तो बेसिक लिख लेना कि डायरी में आपको एक सब कोर्स प्राप्त होगा कंप्लीट, इसके योग्य बने रहना, आजीवन मर्यादा में रहना, आप यहां से जहाज में बैठ के जाओगे सतलोक के अंदर। ये तो चिंता ना करियो। और परमात्मा के पाने के लिए हमने गर्मी छोड़े और हम राज भी त्याग गए। आज तो राज प्राप्ति के लिए पता नहीं के खड़दू उतार दे इंसान, हमने राज भी त्याग दिए और परमात्मा के पाने के लिए हम घोर तप किए, शरीर सुखा दिया, सुख का कांटे हो गए, दीमक चढ़गी, भगवान नहीं मिला। वो क्यों ना मिला, क्योंकि वो तो काट के हथौड़े थे और दांडी काटने का प्रयत्न था, वो कद्दे भी ना कटे, काट के हथौड़े थे और दांडी काटे यानी बड़ा पेड़ हो कोई और उसको कोई काट के हथौड़े थे काटे तो मूर्ख हो। उसके काटने की वो सही औजार मिलने के बाद दो घंटे में मूछ देगा उसने, पट्टाएपट पार मारेगा ठाक। तो आपको वो तेज हथियार दे दिए हैं, सारनाम सतनाम और प्रथम मंत्र। इस जन्म मरण की जांडी ने काट लो हिम्मत सी करके, या फिर नहीं रह जाएगी, फिर अधूरी सदूरी, फिर दिक्कत करेगी। अब जिसको हम परमात्मा माना करते थे, जिसको हम भगवान मान के और उसकी पूजा करा करते थे, ऋषि लोग ब्रह्म मानते थे, अंतिम भगवान, वो भी एकाद ऋषि मारकंडे जैसा न अन्य ब्राह्मण, तो दुर्गा की पूजा करा करते। दुर्गा की पूजा क्यों करा करते, माया पुजारी थे, सिद्धि आ जाती है दुर्गा की पूजा से और फिर वो जंत्र मंत्र करके दुनिया को ठगते, उनमें महिमा के पात्र बन जाते, अपना जीवन नाश करते और साथ में यजमानों का बट्ठा बैठाते भक्तों का। तो इसका कारण क्या था कि ये काल जो भगवान यहां का ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, 21 ब्रह्मांड है इसके, और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी परमात्मा से परिचित हो जाए, यहां से निकलना जाते रे जालते। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक भक्त मिला पहले 10 गांव गांव में सत्संग किया करता था, तो उसने वो बड़ा जिज्ञासु था, वो कह रहा था जी मैंने परमात्मा की प्राप्ति की बड़ी तड़फ है बचपन से ही, मैं रामायण का घना अच्छा पाठी रहा हूं, मुझे बड़ा आनंद आता है भगवान श्री राम की कथा पढ़ के और सुन के, मैं रामायण बहुत पढ़ता रहा, तो उसमें मेरे और भी धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ता था, तो उसमें मेरे को एक शंका आई कि भी सारी लंका के अंदर सब दुर्बुद्धि प्राणी थे, रावण उसके भाई मांस खाम दारू पीवे बकवाद करें, सारे राक्षस जैसे कर्म किया करते थे, और उसमें मंदोदरी और विभीषण रावण को समझा रहे हैं, ऐसा गजब का ज्ञान, वो ज्ञान उनके पास कहां से आ गया, या तो ये इस तुलसीदास की अपनी कल्पना है और ना तो यह बात मेरे नहीं जस्ती। दूसरी बात वो ये कहने लगा कि महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों ने एक यज्ञ करी थी अपने पाप कर्म का नाश करवाने के लिए श्री कृष्ण जी के कहने थे, और उस यज्ञ का एक ऐसा नियम था कि उसमें एक शंख रखा था, शंख जो बजाया करते हैं बाबा जी तू तू करके, ये शंख होता है कि सफेद सा एक जीव का कवर होता है, जैसे ये शंख ले देखे होंगे आपने, छोटे छोटे पानी के अंदर हो जाते हैं, वो बड़ा एक जीव होता है, उसे शंख बन जाता है, उसका ऊपर का बॉडी होता है, उसको ये ऋषि लोग बजाया करते थे शंख। तो एक शंख था पंचमुखी, पांच मुख थे उसके, तो उस यज्ञ के पूर्ण होने का ये था कि वो शंख अपने आप बजेगा जब सभी भोजन खा लेंगे। तो उसमें श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और सारे ऋषि महर्षि देवताओं ने भोजन खा लिया, वो शंख नहीं बजा। फिर सुपच एक बाल्मीक जाति का था, उस बदर खाना खाया तो शंख बज गया, ऐसा हम सुनते और पढ़ते आए हैं। मैं प्रश्न करता हूं तो ये कहते हैं कि वो श्री कृष्ण का भगत था, तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी थी कि भगवान से तो बाजा नहीं भगत के ऊपर बजा देगा, कोई बात हुई है। पर मेरा जच नहीं रही ये बात, मेरी इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं। मैं बोला भाई इस बीमारी की दवाई मेरे दौर है, मैं बताऊंगा, अब सुन ले कान खोल के। उसको सृष्टि रचना सुनाई, सारी कथा बताई। पहले हमारे पास बहुत समय होता था, घंटे दो दो तीन तीन घंटे बैठे रहते थे, दो दो चार चार वक्त। हम दास चाहता था कि दास के इस ज्ञान से कोई परिचित हो जाए 10-20, तो वो आप पर डूंडा ठा देंगे, साथी हो जाएंगे मेरे, फिर सहयोग देंगे अपने भाई बहनों को समझाने में। तो उसने मैंने उसको समझाया कि गीता का ज्ञान किसने बोला, वो कहता श्री कृष्ण ने बोला। नहीं, यह सारी ये बात उलट हो रही है, यदि इतना सिंपल ये अध्यात्म ज्ञान होता तो सारे पार हो जाते आप। श्री कृष्ण जी ने तो पता भी नहीं मैंने गीता में क्या बोला था, उसको वो महाभारत का वो अंश दिखाया, श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, वो पढ़कर हैरान रह गया कि हद होगी, श्री कृष्ण जी अर्जुन को धमका रहा है कि तू बड़ा बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है, तूने वो गीता याद क्यों नहीं रखी जो मैंने युद्ध में बोली थी, और खुद कहता है कि मुझे अब याद नहीं, मैं पूरा नहीं सुना सकता, मैं देख ले तू महाभारत में लिखी हुई, और आप तो कह रहे थे मैं खूब पढ़ा करता, खाक पढ़ा करते तू। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छेड़ मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। फिर तो कति सुन हो गया, फिर दास लगे उसे बताने, सुनियो आप भी सुनो। श्रीमद भगवत गीता में 80% ज्ञान है वेदों वाला और 20% है इस काल के अटकलबाजी। इसने यू नाश करवाना था महाभारत का, श्री कृष्ण नट है, अर्जुन नट है। पहले श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बनकर, भाई लड़ो मत अच्छी बात नहीं, ना जाने किसकी हार हो किसकी जीत हो, कौन भोगेगा, और तुम सारे कटका मर गए इस पृथ्वी ने चाटोगे फिर। और जब नहीं माने लास्ट में श्री कृष्ण जी ने तो यहां तक कह दिया था, भाई एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी ने यह सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो ये पांडव मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ये इस करके हिम्मत कर रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है। श्री कृष्ण जी ने बहुत से देही तोड़ रखी थी, जरासंध जैसे ये मार रखे थे, बड़ी महिमा हो रही थी उनकी। तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूं, शायद ये ढीले पड़ जा पांडव और इनको ले जाऊं, मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहां तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा। तो उस समय अर्जुन नट है, अकमा तो भीख मांग कर खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा भगवान, मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यू काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल, इसका नाम मैं काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं, परवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे, अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने तो जिज्ञासु था। अब विचार के दिए उसमें अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, इस जुलम नहीं करूंगा, भाई भतीजे ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े व्या करें, और आगे न मारूंगा मैं, और किसके लिए। लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा और यदि विजयी हो गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, और अर्जुन तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले या बात उतरे नहीं थी, उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लग गया भगवान है फलाना कैसे होगा, वो तत्परम कौन है, यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुंच गया। कहता कहता जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के, तो खाक भगवान जिसके रूप से डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हैं। लास्ट में अर्जुन ने डरते न हां भर दी, समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया और इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते न हां भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली और आप जो कहोगे वो ही करूंगा। ठालिया लट हो गया नाश, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए, युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया और ठाट से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे वो दिखाई दें कटे हुए सिर और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, वो राज कर रहे हो। अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी, जैसे प्रेत बाधा से व्यक्ति होता है, खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति होते थे वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो, मैं हो लूं जितना होना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में सिर कटे हुए धड़ ऐसे चले हुए आ रहे हैं और हाहाकार मच रही है और मेरा दिल कांपने लग जाता है, औरतें चूड़ियां फोड़ती मुझे नजर आ रही है। अब श्री कृष्ण जी इन पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो कोई भी दिक्कत आती है अपने धार्मिक गुरु के पास ही जाकर उसका समाधान किया जाता है। तो पांचों पांडव रथ लेकर और पहुंच गए द्वारका में, श्री कृष्ण जी से कारण जानना चाहा। श्री कृष्ण जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को ये तकलीफ है, ये दुख है, इसका कारण तथा समाधान बताइयो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया, अपने कुल के लोग मारे और साथ में कितनी सेना मर गई, जिस कारण से आपको ये बाधा ये पाप कर्म दुखी कर रहा है, तो उस समय अर्जुन को एक बहुत जबरदस्त झटका लग गया कि कमाल की बात होगी, जब महाभारत के युद्ध होने से पहले मैं मना करूं था भगवान मैं नहीं युद्ध करता, और अर्जुन का मना कर देना युद्ध खत्म हो जाना था, मैं मना करूं था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस पाप के अन्न को नहीं हम इकट्ठा करना चाहते, और उस समय तो ये कह रहे थे अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हो गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा और युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे, और आज ये भगवान कह रहे तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में आदमी मारे थे, लेकिन उस समय बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन सबर की घूंट पी ली। क्यों? यदि मैं बाद विवाद करूंगा कोई प्रश्न उत्तरी मन कर दी कि आप उस युद्ध के समय तो कह रहे थे आपका कोई पाप नहीं लग गया, और आज कह रहे हो कि युद्ध में मरे हुए व्यक्तियों का ये दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है जो मारे थे, इसलिए उसने ये सोच विचार करके कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और जो श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था वो ये बताया था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भगत ब्राह्मण ऋषि देवता स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो और सभी आवें आपका अन्न खावें आपका भंडारा खावें और उसमें एक शंख रखा जाएगा शंख, और सब जब खाना खा लेंगे भोजन पा लेंगे भंडारे में तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, मुंह का लगा कर बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बजेगा। अपने आप बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अपने आप नहीं बजा तो उस करे हुई यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। अब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ श्री कृष्ण जी के कुल यानी 56 करोड़ यादव और अनेक पूरी पृथ्वी के व्यक्ति ये सब आने थे, जमाने थे, उनको भोजन खवाना था जिसमें अरबों रुपए खर्च होना था। किसके लिए? युधिष्ठिर की प्रेत बाधा समाप्त कराने के लिए। अब अर्जुन ने सोचा यदि मैंने वाद विवाद कर दिया और मेरा भाई जो युधिष्ठिर है ये ऐसा नेक आदमी है, ये समझ जाएगा संकेत तय कि मेरे भाई मेरा उपचार कराने में प्रसन्न नहीं है, इन्होंने तो वाद विवाद शुरू कर दिया खर्चा देख के, और ये बिल्कुल इलाज नहीं कराओगा, यज्ञ नहीं होने देगा, बेसिक मर जाओगा और ये हम नहीं कर सकते। जिस कारण से अर्जुन ने सबर की घूंट भरी और चुप रहा, लेकिन वह छाती में खटके जरूर थी बात कि आज ये क्या कह रहा है कि वो पाप लग गया तो जैसे तैसे वो कहा गया कि आप जैसा उचित समझो कीजिए। श्री कृष्ण जी ने स्थान और समय दोनों निर्धारित कर दिए, सब आमंत्रित करने के लिए देश विदेशों में, वो स्वयं भी निमंत्रण देने के लिए गए, कहीं भीम गया कहीं नकुल कहीं सहदेव कहीं अर्जुन और सब, और नौकर चाकर सब जगह चिट्ठियां भेजी। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हे लरे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। द्वापर में जो परमात्मा आए हुए थे उसमें करुणा में नाम से परमात्मा, जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए तो द्वापर में वो करुणा में नाम से प्रसिद्ध थी। सतलोक से आए थे सहशरीर एक कमल के फूल पर, वाराणसी के अंदर ही एक कमल के फूल पर, एक तालाब में, लहर तारा नहीं था उसमें, अन्य तालाब में, वहां पर आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए और एक वाल्मीकि दंपत्ति निसंतान थे, वो वहां किसी कारण से सरोवर पर गए थे, वहां से भगवान को उठा लाए थे, वहां परवरिश होने से कारण परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे उस द्वापर में। वो वाल्मीकि नहीं जो सतयुग के वाल्मीकि जी थे, वो अलग थे, और ये उसके बाद तो वाल्मीकि कुल शुरू हुआ है उस ऋषि के बाद, तो उस कुल के अंदर फिर ये परमात्मा एक भिक्खु नाम के वाल्मीकि ने प्राप्त हुए थे, और गोदावरी उनकी मुंह बोली माता का नाम था, और उसी वाल्मीकि परिवार का यानी उसी मोहल्ले में एक सुदर्शन नाम का बाल्मीक लड़का था, वो परमात्मा के विचारों से घना प्रभावित हुआ था। उसकी माता पिता ने भी खूब विरोध किया था, पर वो मान्या नहीं। तो परमात्मा की उस ज्ञान से परिचित हुआ, परमेश्वर उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तो सुदर्शन का यह बात पक्की जस्तगी थी कि ये करुणा में को नहीं तो भगवान है। उसके बाद पूरी दृढ़ता से उनके द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था। उधर से सभी ये पांडव और उनके अनुचर नौकर निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए इधर उधर जा रहे थे। तो जहां सुदर्शन जी की झोंपड़ी थी, कुटिया थी उस भगत की, उस साइड में भीम की सेवा लगी, ड्यूटी लगी निमंत्रण देने की। तो सबसे पहले वो साधु संतों को निमंत्रण दे रहे थे। तो भगत सुदर्शन जी अपनी झोपड़ी में रहते थे। पहले छोटे छोटे झोपड़ी होती थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी विशेष वो नहीं था, समूह रूप में इस एक की यहां झोपड़ी है, कि 10 किले दूर है, उसकी 20 किले दूर है, जैसे ढाणी सी बड़ी होती, ऐसे होते थे पहले। तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम, उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूं, मेरा भीम नाम है, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने, और तुम्हारे अन्न को खाकर मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा होगी, उनकी आंसू नहीं सूखी है, बच्चे बिलख रहे हैं, मां से पूछ रहे हैं हमारा पिता कहाँ है, मां कह रही है बेटा फौज में गया है, छुट्टी नहीं मिली है, और अंत में रो रो के बताना पड़ रहा है, फिर सारा परिवार रो रहा है, और तुम मौज मार रहे हो, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, और कौन खावा तुम्हारी रोटी, वो भी नरक में जाएगा, तुमसे तो कसाई भी अच्छा, और जा यहां से भाग, चल अपना काम कर। अब भीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से रोक रखा था कि कहीं पर भगवान श्री कृष्ण और भाई गुस्सा ना हो जाए। फिर सुदर्शन जी ने कहा कि यदि मुझे ले चलना चाहते हो, जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो पहले, ताकि मेरे कुछ पुण्य बने, तब तुम्हारे रोटी खाऊं, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं, इतना घोर पाप है तुम्हारे अन्न में। तो भीम बोला कि भगत घना ना बोला, ज्यादा मत बोला, बस बहुत सुन ली तेरी, मैंने तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा मैं, तने आना होता ही ना बेसिक बताइए, मेरे भाई तो डर लग गया, मैंने कृष्ण जी तो डर लगा है ना, तेरी दे ही तोड़ देता, और तू ना होगा तो शंख ना बज जाएगा, न्यू कहकर भीम तो चल पड़ा पहलवान। अब भीम ने ये सोच रखा था कि भाई श्री कृष्ण बैठे भगवान वहां पर, इन छोटे मोटे कुतरुओं का क्या अस्तित्व है उनके सामने, ऐसी चौंद लाग रही थी उनके, अरे ये चौंद तोड़े अगर कबीर भगवान। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कहते दी सच्चाई तो कहनी पड़े, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग जाकर युद्ध मस्तारेंगे, अपने भाई ने बताओगा, वो सेना भेजेंगे। तो वो कबीर परमेश्वर जी के पास गए, अपने गुरु जी के पास, करुणामय जी के पास, और उनको सारी स्थिति से परिचित कराया, कैसे ऐसे भीम आया था जी, और मैंने ये उत्तर दे दिया। परमात्मा बोले, बेटा खरा जवाब दिया तने, भगत का यही धर्म होता है, मानो चाहे मत मानो, और एक बात और सुन ले, उनका संघ शुंख ना बाद, सारे डांगर बैठे उड़ाए, ये सारे के सारे 84 के ढोर, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, और 12 करोड़ ब्राह्मण ये जितने और बाकी जनता का तो चक्र नहीं, वो तो भक्ति बेचारे करते ही नहीं, ये साधना करते हैं तो भी काल की, और इनकी साधना से इनकी भक्ति से ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। ये 3 ताप के अंतर्गत दुख होता है, कोई प्रेत बाधा होती है, कोई घाल गाल देता है, कोई जंतर मंत्र कर देता है, कोई श्राप दे देता है, ये 3 ताप के अंतर होते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते ही जापम तात कटे ना ये 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, और उस परमात्मा की भक्ति करो। सतगुरु जो चाव है सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास न्यवारे, और चतर गुपत के कागज पाड़े है। अब क्या हुआ, निर्धारित समय पर स्वर्ग से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, जिन्होंने चारों वेद कंठस्थ गोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, और बाकी 56 करोड़ यादव क्योंकि रिश्तेदार थे श्री कृष्ण पांडवों के, तो और भी बहुत से जनता के जन भी बहुत सारे आमंत्रित थे, और एक संघ रख दिया अलग से, एक अलग से स्टेज बनाकर, एक स्थान बनाकर न्यारा, और संख रख दिया एक सुसज्जित स्थान पर। सब ने भोजन खा लिया और संख ने टस से मस आवाज नहीं करी। तो युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास गए कि भगवान संख नहीं बजा, क्योंकि सबकी नजर संख पर थी कि संख बज गया तो यू सारा खर्चा पूरा होया, ना तो व्यर्थ गया। अब उधर से वो देवता लोग स्वर्ग के आए हुए ब्राह्मण आपस में फुसर फुसर कर रहे हैं, अरे शंख कैसे बजेगा, इनके तो पाप बहुत करे, इन्होंने तो करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं, ऐसे बच जाएगा शंख, बताइए इनकी कहानी थी। फिर तुम टिंडे लेने आए थे यहां पर, तुम केकरण आए थे खागड़ो नातेजता। अच्छा अब क्या हुआ, श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहने लगे, भगवान हमने पाप गणे कर रखे हैं, यू शंख नहीं बजे। श्री कृष्ण जी बोले, भाई इस शंख न बजान वाला आया ना है यहां पर। अब परमात्मा ने श्री कृष्ण की बुद्धि ऑन कर दी, अब यू बोल दे साची साची, तो उसको बैठा दिखा कि एक भगत ऐसे ऐसे वहां पर झोंपड़ी में, और सुदर्शन नाम है उसका, आप उसके पास नहीं गए क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि उस साइड में भीम की सेवा लगाई थी, भीम से पूछते हैं, भीम से ने बुलाया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे कोई सुदर्शन नाम का एक वाल्मीकि भक्त है, उसके पास नहीं गए आप, आमंत्रित नहीं किया उसको? युधिष्ठिर ने कहा, जी आमंत्रित तो किया, पर वो तो कुबोल आदमी है, बहुत बूंदा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोलता है, तूने हमें बताना चाहिए था, क्या समस्या थी? कि उसने बहुत बुरी बात कही, एक तो उसने ये कंडीशन रख दी, जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ये सफल हो जा, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो, और दूसरे अटपट गणी बकवाद करे था, न्यू बोला तुमने तो इतने पाप कर रखे हैं, तुम्हारे अन्न को कौन खावे, नरक में जाओगा और तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, तुम सिड़का मरोगे, तुमने इतने पाप कर रखे। बहुत गलत बोला, मैं बता भी नहीं सकता आपको बहुत सी बातें। तो श्री कृष्ण जी को भी पता था कि यू घाटियों बिना गाल काया होगा, इसने बकवाद करी होगी कबीर के पहलवान है। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण जी और मेरे बड़े भाई का डर ना होता तो तेरी थोबड़ी तोड़ देता। श्री कृष्ण जी बोले, भले आदमी, ऐसा भयंकर रोग तुम्हारा है, और बकवाद नो की नो भरी, साधु संतों भक्तों के साथ बकवाद नहीं करा करते, संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके तूने तो और पाप कमा लिए, इकट्ठे कर लिए। और फिर युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान अब इतने महापुरुष यहां बैठे हैं, ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ रहे थे गुप्त रूप में। वहां पर कृष्ण तो बैठा है था, वह दोनों और आ रहे थे गुप्त रूप में। तो कहने लगा कि हे भगवान, ये जो महापुरुष बैठे इनसे एक भोजन खाने से शंख नहीं बजा। परमात्मा लीला कर रहे थे, श्री कृष्ण में प्रेरणा दी, श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ कर दिया सारे स्वभाव में जितने बैठे थे। ने बोला ईब देख जानते। अब उसमें क्या देखा, उनके अलग अलग आसन बिछे हुए थे, उन पर कोई तो मोर बना बैठा, कोई गधा खड़ा खड़ा हुच हुच कर रहा, कोई सांप बनकर नू लपर लपर जीभ करे। युधिष्ठिर ने तो आंखें बंद कर ली कि हे भगवान, या लीला बंद करो, मैं नहीं देख सकता इनकी हालत। श्री कृष्ण जी बोले, या लीला को ना, इनकी असलियत है, अगले जन्म में ये बनेंगे। आज ये महात्मा दिखे तुमने। और सूक्ष्म वेद में भी कहा है 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक, ये 33 करोड़ देवता भी कोई बकरा कोई गधा कोई कुत्ता बनेगा, इनके ऊपर भी एक कर्म की मार ज्यो की त्यों बनी हुई है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी, तुम कौन राम का जप तेजापम, तात कटे नयति नूहतापम। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान ये हालत होगी इनकी? हाँ ये हालत होगी भाई, मैं तो जो इनका भविष्य है वो दिखा रहा हूं, ये लिखा है इनके इतिहास में भविष्य। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान, फिर ऐसा कौन है कि बताने लग रहा। मैं भीम से कहा कि रथ जोड़ और वहीं चलो, रथ तैयार करो और सारे 500 पांडव आधीन होकर नतमस्तक हो जाओ, ना तो तुम्हारा भट्ठा बैठ गया। अब मरता क्या नहीं करता, 500 पांडव छठे भगवान कृष्ण सारथी बनकर, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे साले थे, वो सेवाया भी गेल कराया करते उनकी, लेकर श्री कृष्ण बैठाकर उन पांचों ने और सुदर्शन जी की झोंपड़ी से कम 4 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर, 10-12 किलोमीटर दूर रथ से नीचे उतर लिए और रथ पीछे पीछे आ रहा है। वो पांचों पैदल और जूते धर दिए रथ में नंगे पैरों। अब उस दिन क्या देखा, परमात्मा ने सुदर्शन जी के मन में ऐसी प्रेरणा कर दी। कबीर परमात्मा ने कहा था करुणा में जी ने कि सुदर्शन, उनका शंख ना बजे भाई, यज्ञ पूरी ना हो, वह फिर आऊंगे तेरे पास। अब सुदर्शन जी ने सोचा भाई जुल्म होगा, उनका भोजन खान जाना पड़ेगा, मेरी मुश्किल से कमाई बना है, या उड़े बटेगी ना जाऊंगा तो घनी प्रार्थना करेंगे राजा होगा, जाना पड़ भी सकता है। तो उसने तो घर त्याग दिया, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर निकलेगा कि तो दूर पहाड़िया में। उधर से परमात्मा कहते हैं, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, सुदर्शन रूप बनाकर अपने चेले का, और बैठ गया झोपड़ी में आकर परमात्मा। अब ये अध्यात्म जो मार्ग है इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो, तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। अब अध्यात्म मार्ग में एक ऐसा सिस्टम है कि सामने वाला, अगर सामने वाले में शक्ति भक्ति की ज्यादा है तो अपने आप नीचा हो जाएगा, ये बस की बात नहीं। वो पांचों पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान आ रहे थे सामने, और जो ही निकट आए परमात्मा झोपड़ी में बैठे सुपुत्र रूप धार गए, सुदर्शन का रूप बना। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। अब जब श्री कृष्ण दंडवत कर रहे हैं, युधिष्ठिर का के व्यवती ना दंडवत करें, तो पांचों के पांचों वह दंडवत प्रणाम करें लंबा लेट के। और पुण्यात्माओं, जब तक जीव आधीन नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं बख्शेगा। अब जैसे हमने ये टूटी होती है पानी की, पानी जल की टूटी होती है, इनसे जल लेना है तो पात्र इनका नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर दर के पात्र नहीं भर सकते, पानी नहीं ग्रहण कर सकते, सीधी सी बात। इसी प्रकार भगत को आधीन बनना पड़ेगा भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए। आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो भाई बे अदबी सिर काल। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि हे द्वारकाधीश और हे दिल्ली के बादशाह इंद्रप्रस्थ के राजा, हे पृथ्वीपति, मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो, मुझ गरीब को क्यों दंडवत करते हो। श्री कृष्ण जी खड़े होकर कहने लगे, हे परवरदिगार, ये पांचों पांडव हैं, इन्होंने एक यज्ञ की है, आपको आमंत्रित करने आ रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी उस दिन बात, मेरी वह शर्त पूरी कर दो। क्या शर्त है दाता आपकी? परमात्मा ने कहा कि 100 यज्ञ जो आप कर रहे हैं, ऐसे ऐसे 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे यहां चलूंगा, वो कर दो पूरी। तो कहते हैं परमात्मा ने ये वाणी चारों युगों में बोली है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा, हम हे लरे हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी ही वाणी है, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। पुनात्माओं, जहां से भी आप चलते हो, कितनी भी दूर से और यहां से वहां तक, से ट्रेन में आते हो, से जहाज में आते हो, आपको यहां आने का जितने कदम बनते हैं वहां से यहां तक, उतने यज्ञों जितना पुण्य उस प्राणी को मिलता जो सतलोक आश्रम ब्रुवाला में इस दास के दर्शनार्थ आता है। एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। कैसे आता है? अपने पद और पोस्ट और धन और किसी अन्य जाति वर्ण के अभिमान को घर छोड़ आवे, कि तक कुएं में गिर दे झेरे में, तब यहां आवे। कति नम्र हो गए, जैसे कोई रोगी हो भयंकर और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना बड़ा सेठ हो, तो डॉक्टर उसको कहता कपड़े उतार दे, जब उतार देगा, क्योंकि उसने तो अपनी जान बचाना उद्देश्य होता, उस समय वो भूल जाता मैं क्या हूं, उसने जान दिखाई देती है। वो कहता वहां चेक कराओ, उसी समय पहुंच जाता जांच कराने के लिए, ऐसा कर लो। अच्छा जी, तो वहां उसको अपनी जान दिखाई देती है और डॉक्टर वहां उसकी रक्षक दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जब आप यहां आओ, आपको बहुत बड़ा भयंकर रोग है जन्म और मरण का, और यहां कष्ट पे कष्ट आपके कर्मों की आपको रगड़ने के लिए तैयार खड़े, आपके प्रारब्ध में किस्मत में रखे, उन सबको खत्म किया जाएगा और आपको भक्ति युक्त किया जाएगा सतलोक आश्रम ब्रुवाला में, इसलिए आपको बुलाया जाता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हम वहां से चलकर आए इंद्रप्रस्थ से, और परमात्मा यहां तक जितने हमारे कदम रखे हैं आपकी वाणी अनुसार ये यज्ञ बन गए, और आज आप देख सकते हो इनमें कोई अभिमान नहीं, और आप दास को जानते हो, मेरे मत कोई अभिमान की नाम की चीज नहीं, क्योंकि श्री विष्णु जी के भृगु ऋषि ने लात मार दी थी, तो भी विष्णु जी ने कहा था ऋषि जी तेरा चोट तो नहीं लगी, तो इतने नम्र हैं भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये पांचों पांडव आज इनकी स्थिति क्या है अपरिचित हो, इनको धरती छोटी सी दिखाई देती है आज, ये हालत है इनकी। आज इनमें कोई अभिमान नहीं, जो उस दिन भीम में वजन था पूछ लो इनसे। ये कति विनम्र होकर और अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए आपके दरबार आए हैं, और यहां से वहां तक आने के जितने कदम रखे दाता, आपके वचनानुसार आपके विधान अनुसार ये यज्ञ बन गए, हे उनमें से रख लो दाता जितने आपने रखने, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, बोला चल कृष्ण चलते हैं।
नमस्कार सर।
नमस्कार सर जी, सत साहेब।
क्या शुभ नाम है जी आप?
मेरा नाम दयाराम चौधरी है।
मैं सतना जिला एमपी से आया हुआ हूँ, रीवा संभाग है मेरा।
सर क्या काम करते हैं?
मैं सर मजदूरी का काम करता हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ, घर से गरीब हूँ।
सर संतरामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
सर मैं भगत जी, मैं संतरामपाल भक्ति आने से पहले मैं दुर्गा जी की पूजा किया करता था, हनुमान की भी पूजा उपासना किया करता था, शंकर भगवान की भी करता था, और लास्ट में मैं जो है साईं बाबा की पूजा करता था।
तो जो भक्ति आप करते थे दुर्गा जी की, शंकर जी की, हनुमान जी की, साईं बाबा जी की, उन भक्तियों से आपको क्या लाभ मिला?
भगत जी उन भक्तियों से मेरे को कुछ नहीं मिला, और मैं जो है थोड़ा सा तांत्रिक विद्याएं को जी जानता था, और झाड़ फूंक का भी थोड़ा बहुत काम करता था, तो भक्तों को थोड़ा बहुत सेवा कर देता था जो मेरे से बनती थी। तो मेरे अंदर एक डर भय सा बना रहता था इन भक्ति के करने के अनुसार, मैं अपने आप को डरता रहता था, और मेरे जो घर में बच्चे होते थे बच्चों को भय बना रहता था कि मैं ये काम करता हूँ कहीं ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों में कोई गलत यूज हो, कोई छाया घर बच्चों में पड़े। तो इसलिए ये जो मैं साधना करता था, इन साधनों से मैं थोड़ा मेरे को डर महसूस होता था, और शांति मोक्ष मेरे को शांति रिलैक्स नहीं महसूस होता था जो मैं ये साधनाएं करता था।
सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
सर मैं एक बार मैं टीवी का चैनल जो है देख रहा था, तो चैनल छेड़ते छेड़ते साधना चैनल मैंने देख लिया। जब चैनल देखा तो संत रामपाल गुरु महाराज जी का जो है सत्संग चल रहा था, उस सत्संग को मैंने देखा, और देख को जो है मेरे अंदर एक धारणा उत्पन्न हुई, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि ये जो ज्ञान है, आज तक मैंने ज्ञान सुना नहीं हूँ, और ये ज्ञान में कुछ बहुत बड़ा राज है जो हमारी इन भक्तियों में नहीं है। तो उस जब मैं चैनल को देखा तो दूसरे दिन जो है मैं और अपने साथियों भक्तों को बताया कि ये चैनल कबीर साहब का चैनल आता है, इसको देखो, इसमें बहुत अच्छी ज्ञान की वार्ताएं हैं, चर्चाएं हैं, तो इसको आप लोग सभी लोग देख दो। मेरे कुछ साथी लोग थे कि वो जो इस चैनल को नहीं देखते थे, अन्य कुछ सीरियल देखते थे, मैं उनको जाकर नाराज होता था कि आप इस चैनल को देखिए, इसमें ज्ञान बहुत अच्छा है, गुरु जी ज्ञान बताते हैं। तो उन लोग धीरे धीरे करके देखने लगे। दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं कभी परमात्मा को जो मैं हाथ जोड़ के विनती किया कि हे परम परमेश्वर, अगर आप में शक्ति है और आप में इतना ज्ञान है, जगत के गुरु हैं, विश्व में आपका नाम फैला हुआ है, तो मुझे अपना कुछ चमत्कार दिखाइए, मैं जो ये साधना कर रहा हूँ उन अन्य साधनाओं को मैं बंद करके आपकी शरण में आपके चरणों की सेवा करूंगा। तो परमात्मा ने मेरे को एक लाइट की बिंब, जब मैं पूजा करने बैठा शाम के टाइम, दूसरे दिन ही जैसे मैं रामपाल जी गुरु महाराज से जुड़ा, आज जुड़ा और कल अरदास लगाई, दूसरे दिन ही मैंने जब मैं शाम को संध्या के टाइम पूजा करने बैठा तो अरदास लगाई कि हे परमात्मा, मुझे अपना ज्ञान व रूप ये वो दर्शन मेरे को दिखाइए, ताकि मेरे को विश्वास हो कि हाँ आपकी भक्ति में कुछ सत्य है। जैसे ही वहां से ऊपर से एक दिव्य नाम की एक रोशनी आती है चौगोर, और वो लाइट इतनी तेज रहती है, सफेद रंग की, नीली, पीली, काली, मतलब उसका कोई वर्णन नहीं है। तो वो जैसे आती है, आती धीरे 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 आती है, और उसमें उसके ऊपर गुरुजी कबीर साहब परमात्मा बैठे हुए हैं, और अंदर आते 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 मैंने अपनी साधना में बैठा हूँ, देख रहा हूँ आंख मूंद के, आते आते मेरे अंदर वो समा गई। जब समा गई तो मैं परमात्मा जी को हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम किया कि हे परमात्मा, आप में वास्तव में आप जो परब्रह्म है, सबसे बड़े आप ही हो, इस संसार में आपसे बड़ा कोई नहीं है, और मैं आपके दर्शन कर लिया, और पूर्ण ब्रह्म आप ही हो। तो मैंने दूसरे दिन ही ये चमत्कार देखा। फिर इसके बाद जो है मैं सतलोक आश्रम आया और गुरुजी से गुरु नाम दान लिया। गुरु नाम दान लेने से मेरे को बहुत कुछ फायदा हुआ। मेरे से दिमाग में बीमारी रहती थी, बहुत इलाज कराया, ये ऑटोमेटिक मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। शरीर में कुछ बीमारियां रहती थी, दर्द रहता था, वो भी ठीक हो गया, और परमात्मा ने मेरे को बहुत से चमत्कार दिखाए हैं।
तो सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
और मैं आपको चमत्कार बताता हूँ कि मेरे को परमात्मा इस 2 महीने के अंदर अंदर इतने चमत्कार दिखाए कि मैं अगर वर्णन करने लगूं तो रात भी व्यतीत हो जाएगी, लेकिन मैं पूरे नहीं कर सकूंगा। और एक बार क्या होता कि परमात्मा, मैंने मंत्र का जाप नहीं कर पाया, संध्या आरती की, और मैंने सो गया, थका हुआ काम से आया हुआ था, तो इसके बाद मैं सो गया। तो जैसे ही मेरी नींद लगने ही वाली थी, मैं सोया हुआ नहीं था, तो परमात्मा ने क्या है कि वहां से आकाश से एकदम बड़ा सा पैर रखा और ऊपर से आसमान से और जमीनी तक, जैसे पूरी ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी हो, इतना बड़ा गुरु महाराज का पूरा पैर आकर एक पैर मेरे को दिखाई दिया। अगर दूसरा दिखाई देता तो पता नहीं कितना बड़ा वो पैर होता। मैं डर के जो बैठ गया और गुरु जी से मैं अरदास लगाई कि हे परमात्मा, मेरे से क्या गलती हो गई कि आपने मेरे को इतना भयानक रूप दिखाया। फिर मैंने ज्योत, अखंड ज्योत जलाई और गुरु जी का फिर मैंने मंत्र जाप किया, इसके बाद में सो गया। इसके बाद में भक्ति करते रहा। एक बार फिर मैंने गुरु जी के आश्रम में देखता हूँ, ऊपर एकदम सतलोक का गेट दरवाजा, सोने का गेट होता है बड़ा सा, अच्छा, ऊपर जाता हूँ, पेड़ पौधे बहुत सी चीजें सारी होती है ऊपर। और उसके बाद फिर ये दूसरा चमत्कार है। तीसरा चमत्कार मैं देखता हूँ कि यहाँ अखंड ज्योतियाँ बहुत सी जलती हैं, उसके पत्तों में बनाई हुई है, किसी पेड़ पौधे में। मैं अंदर तो देखा नहीं कि अखंड ज्योति किस में जलती है, लेकिन पत्तों में कम से कम हजारों की संख्या में ज्योतियाँ जलती हैं। उस ज्योतियों के मैंने दर्शन किए। और तीसरा चौथा मैंने चमत्कार एक बार देखा कि गुरु जी महाराज घोड़े में सवार, रथ में, और सफेद रंग के घोड़े हैं, कम से कम 10 घोड़े इधर 10 घोड़े इधर, और बहुत से घोड़े देखता हूँ, सफेद रंग का पूरा लाइट होती, इतनी सफेद लाइट होती है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और गुरु महाराज को मैंने घोड़े में सवार देखा। पांचवा चमत्कार गुरु जी को मैं देखता हूँ, विराट रूप में मैं देखता हूँ कि 10 भुजाएं गुरु जी की यहाँ, 10 भुजाएं इस साइड होती हैं, बीच में गुरु जी बैठे होते हैं। उस रूप को देख करके मेरा ये पूरा शरीर रोम रोम कड़कड़ बिल्कुल खड़ा हो जाता है और मैं कहता हूँ, धन्य हो परमात्मा, आप ही हो पूर्ण ब्रह्म हो, इस संसार में आपके जैसा कोई गुरु है ही नहीं है इस संसार में। मेरे को बहुत से ऐसे सारे चमत्कार होते हैं, जब मैं गुरु महाराज जी से मैं विनती करता हूं तो मेरे को परमात्मा दर्शन देता है, और जो जो छोटा मोटा बिगड़ा काम होता है वो भी परमात्मा पूर्ण करते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं और छोटी मोटी चीजें जो सामने आती हैं उनका नाम लेते हैं, कष्ट दूर हो जाता है, बीमारी भी दूर हो जाती है। भक्त समाज को हम प्रचार करते रहते हैं कि आप परमात्मा के यहाँ चलो और अपना कल्याण कराओ। तो इसी प्रकार जो है भक्ति करते हैं।
सर, साधक समाज को, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
साधक समाज को मैं यही सभी भक्तों को, समाज को यही मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती कर दूंगा, जितने भी हमारे भाई हो बहनों हो, कि आप लोग सभी इस आश्रम में आकर के जुड़िए और अपना कल्याण कराइए। यहाँ जैसे भक्ति कहीं संसार में, सारे विश्व में कहीं भी नहीं पाओगे। और अपना आके कल्याण कराइए और अपना जीवन सफल बनाइए, इस काल से छुटकारा पा करके इस पूर्ण ब्रह्म में आइए और अपना कल्याण कराइए। यही मैं भक्त समाज को मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ और अपनी वाणी में यहीं पे मैं विराम देता हूँ।
धन्यवाद आपको।